एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान और आज हम सब मिलकर एक बड़ी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नियम या तो सब कुछ है या शायद कुछ भी नहीं।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। हाँ, आज हम जिस किताब पर चर्चा कर रहे हैं वो वाकई आंखें खोल देती है। नाम है रूल मेकर्स रूल ब्रेकर्स, मिशेल गेलफैंड की किताब।
ये किताब मतलब हमें ये समझाती है कि क्यों कुछ लोग, कुछ समाज नियमों को लेकर इतने इतने सख्त होते हैं,
और वहीं कुछ दूसरे एकदम बिंदास लचीले से लगते हैं ना।
बिल्कुल, और ये समझना आज के दौर में मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है।
हाँ, सोचिए ना, आजकल राजनीति में कितना टकराव है, ऑफिस में अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं।
अरे ऑफिस छोड़िए, घर में ही देख लीजिए, पति पत्नी बच्चों के साथ नियमों को लेकर कितनी खींचतान होती है।
सही कहा। तो ये किताब इन सब उलझनों को, इन तनावों को समझने का एक नया फ्रेमवर्क देती है, एक नया नजरिया।
जैसे वो अनदेखे धागे जिनसे समाज जुड़ा है उन्हें देखने में मदद करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखिका से। मिशेल गेलफैंड कौन है ये और इनकी बात में वजन क्यों है?
हाँ, तो मिशेल गेलफैंड वो कोई एरी गैरी लेखिका नहीं है। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाती हैं।
अच्छा।
और उनकी खासियत है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, मतलब अलग अलग संस्कृतियों के मनोविज्ञान को समझना। इस फील्ड में वो एक जानी मानी एक्सपर्ट है।
यानी संस्कृतियों के आर पार देखने की माहिर। और ये किताब सिर्फ दूसरों के काम का निचोड़ नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो खास बात है। ये उनके खुद के दो दशक, सोचिए 20 साल से ज्यादा के रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने ही ये टाइट और लूज कल्चर वाला, क्या कहते हैं, सिद्धांत दुनिया को दिया है।
ओ, तो ये उनकी अपनी खोज है।
हाँ जी, और उनका रिसर्च कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था। उन्होंने 30 से ज्यादा देशों को स्टडी किया, हजारों लोगों से बात की, ऐतिहासिक डेटा खंगाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए, मतलब
पूरी गहराई से छानबीन की है।
बिल्कुल। तो जब वो टाइट और लूज संस्कृतियों की बात करती हैं, तो वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही, उनके पास ठोस सबूत है, डेटा है, इसीलिए उनकी बात इतनी महत्वपूर्ण है।
समझ गया। तो चलिए अब आते हैं किताब के मूल विचार पर। ये टाइट और लूज आखिर है क्या ये चक्कर?
देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो गेलफैंड कहती हैं कि हर इंसानी समूह को, चाहे वो पूरा देश हो या ऑफिस की एक टीम या आपका परिवार ही क्यों ना हो, उसे एक स्केल पर रखा जा सकता है।
स्केल? कैसा स्केल?
एक स्पेक्ट्रम समझिए। एक छोर पर है टाइट समूह, यहाँ नियम बहुत साफ होते हैं, मजबूत होते हैं, और अगर कोई इन नियमों से हटके चलता है तो उसे सजा मिलती है, या कम से कम टोका टकी तो होती ही है। सब एक लाइन में चलने की उम्मीद करते हैं।
अच्छा, और स्केल के दूसरे छोर पर?
दूसरे छोर पर है लूज समूह, यहाँ नियम उतने कड़े नहीं होते, ज्यादा लचीलेपन की गुंजाइश होती है। अगर कोई थोड़ा अलग भी करता है तो लोग उसे ज्यादा सह लेते हैं, ज्यादा छूट मिल जाती है, मतलब नियमों को लेकर थोड़ी ढील रहती है।
तो किताब का सार ये है कि ये टाइट लूज का स्केल ही संस्कृतियों को समझने की एक तरह से मास्टर चाबी है।
हाँ बिल्कुल, ये एक बुनियादी आयाम है जिससे हम समझ सकते हैं कि अलग अलग समूह व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं।
और वो बड़ा सवाल कि ऐसा होता क्यों है, मतलब जापान इतना नियम कायदे वाला क्यों लगता है और ब्राजील इतना आराम पसंद।
हाँ, ये किताब इसी क्यों का जवाब ढूंढती है। और गर्लफ्रेंड का जवाब बड़ा मजेदार है। वो कहती है बात लोगों के कैरेक्टर की नहीं है,
तो फिर
बात है उस समूह के इतिहास की, खासकर उन्होंने अतीत में कितने खतरों का सामना किया है।
खतरे? कैसे खतरे?
हर तरह के खतरे, जैसे बार बार होने वाले हमले, युद्ध, भुखमरी, जानलेवा बीमारियां, या फिर बहुत ज्यादा जनसंख्या का दबाव।
ओ, तो जिन समाजों ने ये सब ज्यादा झेला,
हाँ, उन्हें जिंदा रहने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज्यादा तालमेल की जरूरत पड़ी। और तालमेल कैसे आएगा? सख्त नियमों से। तो वो धीरे धीरे टाइट बन गए, नियम उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गए।
समझ गया। और जहाँ कम खतरे थे, ज्यादा शांति, ज्यादा सुरक्षा,
वो समाज ज्यादा लूज हो गए, उन्हें उतनी सख्ती की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो वहाँ नियमों में ढील रही, लोगों को ज्यादा आजादी मिली, और इसका नतीजा नए विचार, क्रिएटिविटी, इन सबको ज्यादा जगह मिली।
वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। तो ये किताब हमें इसी टाइट लूज दुनिया की एक तरह से गाइड टूर पर ले जाती है।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, ये दिखाती है कि ये टाइट लूज का चश्मा लगाकर हम अपने दिमाग को, अपने परिवार को, अपने काम की जगह को, यहाँ तक कि अपनी राजनीति को कैसे बेहतर समझ सकते हैं।
और आखिर में इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये भी।
हाँ, आखिर में प्रैक्टिकल बातें भी हैं कि इस समझ से हम अपनी जिंदगी को कैसे सुधार सकते हैं। ये सिर्फ अकेडमिक चर्चा नहीं, एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड भी है।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। किताब को चार हिस्सों में बांटा गया है ना?
बिल्कुल।
पहले हिस्से में क्या खास है?
पहला हिस्सा है संस्कृति का गुप्त कोड। इसमें गेलफैंड हमें टाइट और लूज संस्कृतियों के असली उदाहरण देती हैं, जैसे जापान, सिंगापुर, जर्मनी, ये टाइट कल्चर है। नियम साफ है, लोग मानते हैं, गड़बड़ की गुंजाइश कम।
और लूज के उदाहरण?
जैसे अमेरिका।
हाँ,
अमेरिका, ब्राजील, न्यूजीलैंड, यहाँ नियम उतने साफ नहीं होते, थोड़ी अस्पष्टता रहती है, लोगों को ज्यादा आजादी महसूस होती है, अगर कोई कुछ अलग करता है तो ज्यादा टोकाटाकी नहीं होती।
और वो घड़ी वाली बात भी इसी में है।
अरे हाँ, वो बड़ा मजेदार पॉइंट है। गेलफैंड बताती हैं कि टाइट देशों में पब्लिक घड़ियां ज्यादा सही समय बताती हैं, क्योंकि वहां समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है।
कमाल है। और इसी हिस्से में गोल्डीलॉक्स सिद्धांत भी है।
हाँ, गोल्डीलॉक्स, जैसे कहानी में दलिया ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए।
बिल्कुल बीच का।
हाँ, वैसे ही गर्लफ्रेंड कहती हैं कि न तो टाइटनेस अपने आप में अच्छी है न लूजनेस। टाइटनेस से ऑर्डर आता है, सुरक्षा मिलती है, तालमेल बनता है, ये सब जरूरी है।
और लूजनेस से?
लूजनेस से आजादी मिलती है, नए आइडियाज आते हैं, बदलाव की गुंजाइश बनती है, ये भी जरूरी है।
लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी है, ज्यादा टाइट हो गए तो?
दम घुटेगा, लोग बंधावा महसूस करेंगे,
और ज्यादा लूज हो गए तो?
अराजकता फैल सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो सही संतुलन वही आइडियल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ये टाइट और लूज बनता कैसे है, इसका कारण क्या है।
हाँ, ये क्यों वाला सवाल।
दूसरा भाग इसी क्यों का जवाब है, टाइट और लूज का कारण, और यही गर्लफ्रेंड अपना मुख्य तर्क रखती है, खतरा।
खतरा, यही है टाइटनेस का असली इंजन।
खतरा मतलब किस तरह का खतरा, सिर्फ युद्ध नहीं, कई तरह का पारिस्थितिक खतरे भी, जैसे जहां बार बार भूकंप आते हो, बाढ़ आती हो, सूखा पड़ता हो, या खाने की कमी रहती हो, या बीमारियां बहुत फैलती हो।
अच्छा,
और इंसानों के बनाए खतरे भी, जैसे लगातार लड़ाइयां, बाहरी हमले, पड़ोसियों से तनाव, या फिर बहुत ज्यादा आबादी का घनत्व जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
तो जिन समाजों ने ये सब ज्यादा झेला, उन्हें मिलजुल कर, मतलब नियमों में बंध कर रहना पड़ा, ताकि वो बच सकें, एक तरह से सर्वाइवल के लिए।
एग्जैक्टली, सर्वाइवल के लिए कोऑर्डिनेशन, अनुशासन जरूरी हो गया, और धीरे धीरे ये जरूरत उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गई, वो टाइट हो गए।
किताब में कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, जर्मनी का उदाहरण दिया है, इतिहास देखिए, युद्ध, बंटवारा, तो वो एक टाइट कल्चर बना। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जो भौगोलिक रूप से अलग थलग, शांत और सुरक्षित रहा, वो एक लूज कल्चर बन गया।
ये कनेक्शन तो साफ दिखता है, इतिहास और भूगोल कैसे हमारी सोच को गढ़ते हैं। अब तीसरा हिस्सा, हमारी दुनिया में टाइट और लूज, यहाँ बात सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहती।
नहीं, अब ये हमारे अंदर तक आती है। ये हिस्सा बताता है कि ये टाइट लूज का फंडा सिर्फ बाहरी नियमों का नहीं है, ये हमारे दिमाग को भी शेप देता है।
हमारे दिमाग को कैसे?
टाइट कल्चर में पले बड़े लोग अक्सर प्रिवेंशन फोकस वाले होते हैं, मतलब उनका ध्यान गलतियों से बचने पर, सुरक्षित रहने पर, नियमों का पालन करने पर ज्यादा होता है। वो ज्यादा सावधान, ज्यादा आत्मनियंत्रित होते हैं।
और लूज कल्चर वाले?
वो प्रमोशन फोकस वाले होते हैं, उनका ध्यान नए मौकों को पकड़ने पर, नए अनुभव लेने पर, आगे बढ़ने पर ज्यादा होता है। वो अस्पष्टता या अनिश्चितता से कम घबराते हैं, ज्यादा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। सोचिए, हमारी परवरिश हमारे सोचने का तरीका तक बदल सकती है।
ये तो गजब है, और ये सिर्फ सोच तक नहीं, परिवार और सामाजिक वर्ग में भी झलकता है।
हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। गर्लफ्रेंड का शोध दिखाता है कि अक्सर वर्किंग क्लास, जहां आर्थिक अस्थिरता ज्यादा होती है, वहां पेरेंटिंग थोड़ी टाइट होती है, बच्चों से आज्ञा पालन, अनुशासन की उम्मीद ज्यादा होती है।
और मिडिल या अपर क्लास में, जहां ज्यादा सुरक्षा होती है,
वहां पेरेंटिंग थोड़ी लूज हो सकती है, बच्चों को अपनी बात कहने, सवाल पूछने, अपनी मर्जी से चीजें एक्सप्लोर करने की ज्यादा छूट मिलती है, क्रिएटिविटी पे ज्यादा जोर हो सकता है।
एक ही शहर में अलग अलग तरह की परवरिश, ये बात कुछ समझ आती है। और यही चीज काम की जगह मतलब वर्क प्लेस पर भी लागू होती होगी।
बिल्कुल, सोचिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है या एक सर्जरी टीम, वहाँ क्या चाहिए?
वहाँ तो भाई एकदम सख्त नियम चाहिए, जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है।
एग्जैक्टली, वो एक बेहद टाइट माहौल होना ही चाहिए, हर प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। लेकिन अब सोचिए एक एड एजेंसी के बारे में, या एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप, या कोई आर्ट स्टूडियो।
वहाँ तो मामला उल्टा होगा, वहाँ तो नया आइडिया चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, लोग खुलकर बोलें, एक्सपेरिमेंट करें।
हाँ, तो वो माहौल लूज होना चाहिए, ज्यादा नियम कायदे वहाँ शायद क्रिएटिविटी को मार देंगे।
और मजे की बात यह है कि एक ही कंपनी में दोनों की जरूरत हो सकती है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट टाइट हो पर मार्केटिंग या R&D लूज।
बिल्कुल, और इसका सीधा असर लीडरशिप पर पड़ता है। लीडर को ये समझना बहुत जरूरी है कि उसकी टीम या उसका संगठन किस तरह का है, टाइट या लूज, और फिर उसी हिसाब से लीड करना होगा।
हाँ, टाइट टीम को ज्यादा ढील देना शायद काम बिगाड़ दे,
और लूज टीम पर जरूरत से ज्यादा सख्ती करना उनकी एनर्जी खत्म कर सकता है।
सही बैलेंस ढूंढना लीडर का काम है।
ठीक है, अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, टाइट और लूज का भविष्य। यहाँ आजकल की दुनिया की बात है।
हाँ, यहाँ गिलफैंड आज की कुछ बड़ी चुनौतियों को इस टाइट लूज लेंस से देखती हैं, जैसे वो सांस्कृतिक चरम सीमाओं के खतरों की बात करती हैं।
मतलब
जब कोई समाज जरूरत से ज्यादा टाइट या लूज हो जाए।
हाँ, और वो कहती हैं कि आज दुनिया भर में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हम देख रहे हैं, मतलब समाज का दो विरोधी खेमों में बंट जाना, उसका एक बड़ा कारण टाइट और लूज सोच का टकराव भी हो सकता है।
अच्छा, ये कैसे, जरा समझाएंगी?
देखिए, जब समाज में कुछ लोगों को लगता है कि खतरा बढ़ रहा है, भारी खतरा, आर्थिक खतरा, सांस्कृतिक बदलाव का खतरा, तो वो क्या मांगते हैं? ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा व्यवस्था, पुराने मूल्यों पर जोर, सख्त नियम, ये टाइट होने की इच्छा है। दूसरी तरफ कुछ लोग बदलाव को, व्यक्तिगत आजादी को, सहिष्णुता को ज्यादा महत्व देते हैं, वो नियमों में ज्यादा ढील चाहते हैं। ये लूस नजरिया है। जब ये दोनों पक्ष एक दूसरे को खतरा मानने लगते हैं तो बातचीत खत्म हो जाती है और समाज बट जाता है।
ये तो बहुत प्रासंगिक बात है आजकल, लेकिन क्या इसका कोई हल है? किताब कोई उम्मीद देती है?
हाँ बिल्कुल, आखिरी चैप्टर आशावादी है। गर्लफ्रेंड कहती हैं कि सबसे जरूरी है जागरूकता और संतुलन। हमें ये समझना होगा कि टाइटनेस और लूसनेस दोनों की अपनी जगह है,
और जरूरत के हिसाब से बदलना होगा।
हाँ, जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना सीखना होगा। जैसे कोरोना महामारी आई तो कई लूज समझे जाने वाले देशों को भी कड़े नियम अपनाने पड़े, है ना? वो जरूरत थी। वैसे ही अगर कोई बहुत टाइट कंपनी इनोवेशन चाहती है तो उसे जानबूझकर कुछ जगहों पर थोड़ी ढील देनी पड़ेगी, थोड़ा लूज होना पड़ेगा।
तो फ्लेक्सिबिलिटी और समझदारी,
वाह,
ये कुंजी है।
बिल्कुल।
तो ये पूरी चर्चा, वाह, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हमें कुछ मुख्य बातें मतलब की टेकअवेज याद रखने हों तो वो क्या होंगे?
मेरे हिसाब से पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये टाइट लूज का स्केल कोई अनोखी चीज नहीं, ये हर इंसानी समूह पर लागू होता है। देश हो, कंपनी हो, परिवार हो, सब कहीं ना कहीं इस स्केल पर फिट होते हैं। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत जैसा है।
दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो ये कि नियमों के पीछे अक्सर डर या खतरे का इतिहास होता है। ये जानने के बाद हम दूसरों के रिवाजों या नियमों को अजीब या पिछड़ा समझने के बजाय उनके पीछे की वजह को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इससे सहानुभूति बढ़ती है।
टाइटनेस से ऑर्डर आता है, लूजनेस से क्रिएटिविटी। जरूरी है सही बैलेंस, और भारत जैसे देश में तो ये और भी सच है। यहाँ तो हर 100 किलोमीटर पर नियम और माहौल बदल जाता है ना?
सही कहा, यहाँ तो टाइट और लूज का संगम हर जगह दिखता है। चौथी बात फिर यही हुई कि व्यवस्था और खुलेपन के बीच ये संतुलन कोई फिक्स चीज नहीं, इसे लगातार साधना पड़ता है।
बिल्कुल, और पांचवी बात, हमें सांस्कृतिक समझदारी, कल्चरल इंटेलिजेंस विकसित करनी होगी। मतलब इस टाइट लूज स्केल को समझना और अलग अलग स्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ व्यवहार करते वक्त इसे ध्यान में रखना।
किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो एकदम छप जाते हैं दिमाग में, कोट्स जैसे।
हाँ, कई हैं, जैसे वो सबसे बुनियादी बात, संस्कृतियों के बीच असली फर्क ये नहीं कि उनके नियम है या नहीं, बल्कि ये है कि वो नियम तोड़ने पर कितनी छूट या सजा देते हैं। ये तो पूरी थ्योरी का सार है।
और वो कारण वाली बात भी बहुत पावरफुल है। किसी संस्कृति के नियमों को समझना है तो उसके खतरों के इतिहास को समझो, युद्ध, अकाल, बीमारियां, यही अक्सर टाइट समाजों के निर्माता हैं। ये क्यों इतना साफ कर देता है?
बिल्कुल। और संतुलन वाली बात भी याद रखने लायक है। टाइटपन व्यवस्था देता है, लूजपन खुलापन। कोई स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं। यह हमें जजमेंटल होने से बचाता है।
और आखिर में इसका गहरा असर, ये टाइट लूज मानसिकता सिर्फ बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर जाकर हमारे आत्मनियंत्रण, रचनात्मकता और राजनीतिक विचारों तक को आकार देती है। ये दिखाता है कि संस्कृति हमारी रग रग में बसी है।
हाँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है सिद्धांत के तौर पर, लेकिन क्या इसका हमारी मतलब आम जिंदगी में भी कोई फायदा है? कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन?
मुझे तो लगता है बहुत हैं। सोचिए, ऑफिस में आपकी टीम में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। कोई जर्मनी से है जो बहुत टाइट कल्चर से आता है, कोई ब्राजील से जो लूज कल्चर से। ये समझ आपको बताएगी कि उनके काम करने का तरीका अलग क्यों है। आप शायद बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे।
हाँ, या घर में ही देख लीजिए, हो सकता है आप ज्यादा व्यवस्थित हो टाइट और आपका पार्टनर थोड़ा बेपरवाह लूज। ये समझ शायद झगड़े कम करने में मदद करे। आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। पेरेंटिंग में भी ये मदद कर सकता है। कब नियम सख्त रखने, कब बच्चों को स्पेस देना है।
और समाज और राजनीति के स्तर पर
वहां भी ये समझने में मदद मिल सकती है कि क्यों कुछ समूह सुरक्षा परंपरा पर इतना जोर देते हैं, शायद टाइट मानसिकता की वजह से महसूस होने वाले खतरे के कारण, और क्यों दूसरे समूह स्वतंत्रता बदलाव पर, शायद लूज मानसिकता के कारण। अगर हम दोनों के नजरिए को समझें तो शायद थोड़ा बेहतर संवाद हो पाए, नफरत कम हो।
और हाँ, ट्रैवलिंग, घूमने फिरने में तो ये पक्का काम आएगा।
अरे हाँ, अगर आप जापान जा रहे हैं तो आप तैयार रहेंगे कि वहाँ समय की पाबंदी, लाइन में लगना, शोर न करना, ये सब बहुत जरूरी है।
और अगर इटली जा रहे हैं तो आप ज्यादा लचीलेपन, एक्सप्रेसिव बातचीत और शायद थोड़ी देर सवेर के लिए भी तैयार रहेंगे। कल्चर शॉक कम होगा।
बिल्कुल।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी के आखिर में आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे या सबसे सरप्राइजिंग बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे अहम ये था कि इंसानी व्यवहार कितना भी अलग अलग क्यों ना लगे, उसके पीछे अक्सर गहरे पैटर्न्स होते हैं। ये टाइट लूज का नजरिया एक तरह का डिकोडर है। यह हमें लोगों के क्यों को समझने में मदद करता है, सिर्फ उनके क्या को नहीं। और इससे हम दुनिया को ज्यादा खुले दिमाग से देख पाते हैं।
किसी के नियम या आदतें शायद उनके अनुभवों, उनके माहौल की वजह से हैं, हमें उन्हें जज करने से रोकता है। और ये जानना भी कमाल का था कि इतना सीधा सा लगने वाला आइडिया टाइट बनाम लूज जिंदगी के हर पहलू को छूता है, हमारे सोचने से लेकर दुनिया की पॉलिटिक्स तक। वाकई ये संस्कृति के छुपे कोट को खोलता है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया जटिल है, पर उसे समझने के तरीके भी हैं, बस सही नजरिया चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।